नमस्कार भारत, 5 मार्च रविवार, मैं हूं निखिल रंजन। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज, वाराणसी में प्रधानमंत्री ने डेरा डाला। सोनभद्र में उद्योगों की भरमार, लेकिन नदी के प्रदूषण से लोग हो रहे हैं बीमार।
जैसे मैं यहाँ कुश्ती लड़ता था, दंगल, अभी भी तक दंगल कराते सर, अभी मेरे अंगुलियों में फिगर में ये सब कुछ है सर जी, समझ रहे ना, लेकिन यहाँ तक मैं सही हूँ, ऐसे फोड़ूंगा मेरा सब फूटेगा।
मणिपुर में पहले दौर का मतदान खत्म, अलगाव की आंधी के बीच लोग पूछते हैं सवाल।
15 साल उसने बार बार वो तो वो जीत हुआ है ना, तो यहाँ का तो एक भी डेवलपमेंट तो पूरा जीरो हो गया।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में बनारस में सियासी हलचल तेज हो गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने चुनावी रैलियां की। आज भी वहां गहमा गहमी रहने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत से पहले ओबामा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ट्रंप टावर के फोन कॉल्स टैप किए थे। ओबामा के प्रवक्ता केविन लुइस ने कहा है कि ये आरोप झूठे हैं, ना तो ओबामा और ना ही व्हाइट हाउस के किसी अधिकारी ने किसी अमरीकी व्यक्ति की जासूसी के आदेश दिए। पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के व्हाइट हाउस सलाहकार जॉन डीन ने बीबीसी को बताया,
That's typically done by the FBI, and they do it in a way that the person who's being wiretapped.
ये काम FBI करती है और वे इस काम को इस तरीके से अंजाम देते हैं कि जिसकी टैपिंग की जाए उसे इस बारे में कोई सबूत नहीं मिलेंगे। वो लोग स्विच या राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के जरिए ऐसा करते हैं और जिसकी टैपिंग की जा रही होगी उसे इसकी जानकारी भी नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बेतुकी बात कर रहे हैं। ये थे पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के व्हाइट हाउस सलाहकार जॉन डीन। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खेरे ने कहा है कि बीते 48 घंटों में देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भूख से 110 लोगों की मौत हो गई है और सूखे के कारण लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सोमालिया उन 4 देशों में से एक है जहां भयंकर सूखा पड़ने की आशंका है और यहां 50 लाख लोगों को मदद की जरूरत है। सोमालिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि दक्षिण पश्चिमी इलाके में, दक्षिणी इलाके में और सोमालिया के अन्य हिस्सों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और मेरा अनुमान है कि देश की आधी आबादी सूखे की मार झेल रही है। ये थे सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खेरे। कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन सेना ने तुर्क समर्थक विद्रोहियों के हमले झेल रहे सीरियाई शहर मानबीज के चारों ओर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। गठबंधन सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार उनका उद्देश्य हमलों को नाकाम करना और इस्लामिक स्टेट को हराना है। बीते साल कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मानबीज से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिया था। तुर्की की मांग है कि कुर्द लड़ाकों को शहर से बाहर फरात नदी के पूर्वी इलाके की तरफ निकलने दिया जाए। मलेशिया का कहना है कि उसने उत्तर कोरिया के राजदूत कांग चोल से कहा है कि वे 48 घंटे के भीतर मलेशिया छोड़कर चले जाएं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम की हत्या के मामले को लेकर देश कांग चोल को देश से निकलने के लिए कहा गया है। उत्तर कोरिया के राजदूत ने कहा था कि उनका देश इस मामले की जाँच को लेकर मलेशिया पर भरोसा नहीं कर सकता, जिसके बाद मलेशिया ने यह कदम उठाया है। मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में हवाई अड्डे पर 2 महिलाओं ने जहर देकर किम जोंग नम की हत्या कर दी थी। कनाडा का कहना है कि हाल में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रवासियों के लिए दिए गए आदेश के बाद गैरकानूनी तरीकों से देश की सीमा में अप्रवासियों का आना बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद वो अमरीका से सटी अपनी सीमाओं पर मजबूत नियंत्रण नहीं रखेंगे। कनाडा के एक आश्रय स्थल का कहना है कि अफ्रीका और मध्य पूर्व से सैकड़ों लोग ठंड और बर्फ से जूझते हुए यहां पहुंच रहे हैं। कनाडा के नागरिक सुरक्षा मंत्री राल्फ गुडेल का कहना है कि ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत हो। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत। बीबीसी रेडियो पर रविवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। आज रविवार है और आमतौर पर ये दिन थोड़ा शांत होता है, थोड़ी हलचल कम होती है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो इतना तेज और इतना शोर शराबे से भरा हुआ है कि उसकी हलचल पूरे देश में सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान हो चुका है और अब सिर्फ 40 सीटों पर मतदान बाकी है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी फिलहाल चुनावी दंगल का सबसे बड़ा अखाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी का पूरा अमला वाराणसी में कैंप किए हुए है। वाराणसी में रोड शो और रैलियों में कल पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी छाए रहे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उतरे। सुनिए पूरे दिन का हाल हरता कांडपाल से।
उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी आखिरी जोर आजमाइश में लगे हैं। वाराणसी तो जैसे राजधानी में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 दिन के लिए यहां डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के करीब दर्जन भर मंत्री पिछले कई दिनों से यहां कैंप किए हुए हैं और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र को भाजपा की साख के सवाल के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए मोदी ने कल बनारस में 2 बार रोड शो किया। खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। चुनावी दंगल में जीत का आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मंदिर गए, लेकिन अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर कुछ यूं निशाना साधा।
अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई।
वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2012 में शहरी क्षेत्र की 3 सीटें ही उसके खाते में गई थी। पार्टी के सामने इस बार इससे ज्यादा सीटों को जीतने से कहीं बड़ी चुनौती इन सीटों को बचाने की है, क्योंकि इनमें से 2 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए और इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी जा सकती है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कल अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो के लिए उतरे। उनके साथ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी थी। अब तक के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव के बीच श्मशान, कब्रिस्तान और बिजली जैसे कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हो चुकी है। इस बार अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को उन 10 चीजों के नाम गिनाने की चुनौती दी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सोची हो। इस बीच अपनी रैली में अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह का बयान भी दे डाला। वाराणसी में 8 मार्च को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले चुनावी सरगर्मी किस कदर बढ़ती है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज भी वाराणसी में रैली और रोड शो करने वाले हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी हरता कांडपाल। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हरिता कह रही थी, कि आज भी वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री का एक विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करना क्या बीजेपी की घबराहट का संकेत है? इस वक्त वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी मौजूद हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पूर्णिमा जोशी, आपका स्वागत है बीबीसी के इस कार्यक्रम में। ये बताइए कि कल आपने पूरे दिन देखा वहाँ की गतिविधियों को, बीजेपी इस तरह से जो इसको अपनी नाक का मुद्दा बनाए हुए है, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए है, क्या कोई घबराहट देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, क्योंकि कल हमने जैसे रैलीज में भी देखा, अखिलेश की रैली और मैं लोग ज्यादा थे प्रधानमंत्री की रैली के बजाय, और दूसरी चीज मतलब एक तो ये खैर ऑर्गेनाइजेशन का भी मसला होता है और प्रधानमंत्री दो दिन और हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक तरह से खुद से सबूत है कि प्रधानमंत्री तीन तीन दिन अपने ही संसदीय चुनाव क्षेत्र में बैठे रहे हैं। तो ये इससे क्या आपको संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री के अलावा न सिर्फ प्रधानमंत्री आधा कैबिनेट बीजेपी का यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उसके उसका कारण मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे टिकट वितरण हुआ है बीजेपी की तरफ से, तो लोकल लोगों में बहुत नाराजगी है। जैसे यहाँ पे जो दक्षिणी बनारस का क्षेत्र है उसमें 7 दफे से बीजेपी की तरफ से एक विधायक थे श्यामदेव रॉय चौधरी, उनका अचानक टिकट काट दिया गया और एक नए विधायक को नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। एक तो वो है, और उस इलाके में न सिर्फ बंगाली लोग ज्यादा हैं, उसमें श्यामदेव रॉय चौधरी की छवि ऐसी है कि कांग्रेसी भी कहते हैं कि हम उनको वोट देते थे, क्योंकि वो एक तरह से लोकल बहुत ही माने हुए आदमी है।
जी पूर्णिमा, मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री और पूरा अमला जो वहां पर मौजूद है, तो लोग उनकी मौजूदगी को किस तरह से देख रहे हैं? लोग क्या उस पर बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं? जो उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, वहां से आपको क्या संकेत मिला, क्या दिखाई पड़ा?
जी प्रधानमंत्री की रैली करने का मतलब ही यही है कि एक तो प्रधानमंत्री अभी तक काफी लोकप्रिय है, मतलब नोटबंदी वगैरह से थोड़ी नाराजगी जो लोगों की थी वो भी प्रधानमंत्री की खुद की पर्सनालिटी जो है, लोग उनसे अभी भी ये आशा रखते हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। मतलब अभी तक जो सपने पूरे नहीं हुए जो कि अखिलेश यादव और राहुल बार बार याद दिलाते हैं लोगों को, वो ठीक है, लेकिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए, तो उनके आने से एक फर्क तो पड़ता है। इसीलिए असल में बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक प्रधानमंत्री है और कोई उनका तरकीब इस इलेक्शन में काम कर नहीं पाया है। तो प्रधानमंत्री ही सबसे ज्यादा रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ही जो है उनकी इज्जत बचा सकते हैं बनारस में, क्योंकि प्रधानमंत्री के होते हुए अगर तीनों सीटें बीजेपी हार गई तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात है ना बीजेपी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी।
जी पूर्णिमा जोशी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वाराणसी से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब आखिरी दौर में हैं और बीबीसी ने उत्तर प्रदेश में उन शहरों के हालात पर खबरें सुनाई हैं, रिपोर्टें सुनाई हैं जो किसी खास उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज आपको सोनभद्र जिले में ले चलते हैं, जहां 7वें और अंतिम चरण में 8 तारीख को जिन जिलों में मतदान होंगे उनमें पावर हब के रूप में जाने जाने वाला ये जिला यानी सोनभद्र भी है। इसी जिले में राज्य विधानसभा की आखिरी सीट आती है दुद्धी। यहाँ की जमीन पर पावर प्लांट, एल्यूमिनियम प्लांट जैसे तमाम उद्योग भले ही लगे हों, लेकिन यहाँ की जनता इसकी कीमत फ्लोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों को झेलकर उठा रही है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने पिछले दिनों दुद्धी का दौरा किया और जो दिखा उन्हें वो इस रिपोर्ट में सुनिए।
कुसमहा गांव की रामरथी की उम्र अभी कोई 50-52 साल की, लेकिन उनकी पीठ 90 डिग्री के करीब झुकी हुई है, दोनों टांगे धनुष का आकार ले चुकी हैं और हाथ किसी तरह से बांस के एक डंडे को पकड़ पाते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए खड़ी हो सकें और चल सकें।
पैर में ही आपके कब से है इस तरह की दिक्कत?
होगा 4-5-6 बरस।
ऐसा क्यों है?
अब हम का जाने की कैसे बा।
तो इसको डॉक्टर को नहीं दिखाई कभी?
अनहेर देखा वाल बाकी
कोई फायदा नहीं हुआ?
नहीं, जब फायदा हो जाता ऐसा हो जाता।
तो ऐसे सबको लोगों को दिक्कत है क्या इस तरह की?
हाँ, तो ज्यादा तो यही है वा, खाली वो पानी की दिक्कत है वा।
रामरती के साथ ही उनकी देवरानी दुर्गा खड़ी थी, उन्हें भी ऐसी ही दिक्कत है और चलने फिरने में असमर्थ हैं। दरअसल ये समस्या न सिर्फ रामरती और दुर्गा की है बल्कि इस इलाके के कई गांवों में आम है। पास के हैंडपंप पर पानी पीने की कोशिश में कुछ बच्चे ऐसे ही मिले। इनमें कुछ के पैर तो इतने खराब थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। इनके दांतों पर भी फ्लोरोसिस का साफ असर दिखता है। आसपास के उद्योगों से निकलने वाले फ्लोराइड की वजह से यहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है, इसलिए सीधे तौर पर हैंडपंप या कुओं का पानी पीने से फ्लोरोसिस नाम की ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पीड़ित हैं। सीताराम घरों में पेंटिंग यानी पुताई का काम करते हैं, देखने में हृष्ट पुष्ट हैं लेकिन पैरों से मजबूर हैं।
गोविंदपुर में जैसे कि खादी ग्राम उद्योग से ऊपर आप आएंगे तो यही प्रकोप पाएंगे सर। जैसे मैं यहाँ कुश्ती लड़ता था दंगल, अभी भी दंगल कराते हैं सर। अभी मेरे अंगुलियों में फिगर में ये सब कुछ है सर जी, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ तक मैं सही हूँ, ऐसे फोड़ूंगा मेरा सब फूटेगा, लेकिन यहाँ से इधर मेरा काम नहीं करता सर। आप कहेंगे बैठेंगे तो मैं नहीं बैठ सकता।
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे इस जिले में हिंडाल्को जैसी बड़ी एल्यूमिनियम की फैक्ट्री और कई बड़े पावर प्लांट हैं। इसके बावजूद यहाँ के कई गाँव में अभी बिजली नहीं पहुँची है। बिजली, सड़क और विकास की तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित ये लोग जबरन मिल रही इस बीमारी से बेहद परेशान हैं। लेकिन अपना दर्द कहें किससे? स्थानीय पत्रकार जगत नारायण विश्वकर्मा कहते हैं,
फ्लोरोसिस के जो है वो तो नेचुरल है थोड़ा, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं है कि लोगों को नुकसान करे। जब से ये उद्योग लगे हैं यहाँ पर डे 3,20,000 टन कोयला जलता है, जिससे काफ़ी मात्रा में फ्लोराइड निकलता है, मरकरी निकलता है और निकिल निकलता है, शीशा निकलता है, और ये धुएँ के माध्यम से और एस पाउंड के माध्यम से दोनों इस क्षेत्र में पूरा जल स्रोत को भी गंदा कर रहा है, हवा को भी गंदा करता है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि कंपनियों और सरकार ने भी गाँव में पानी साफ करने के लिए आरओ प्लांट लगवाए हैं, लेकिन ये प्लांट किसी गांव को मिले हैं और किसी को नहीं।
यहाँ लगना चाहिए जहाँ ज्यादा प्रकोप है, हाथ पैर खराब है, नहीं चल पा रहे हैं लोग, और जो है कि प्रधान लोग उधर अपने तरफ नजदीक में कर लिए, एक गांव में दूठ कर दिए, जहाँ ज्यादा जो है प्रकोप है इसका वहाँ नहीं लगा सर।
इलाके की ज्यादातर आबादी जनजातियों की है। आगामी 8 मार्च को यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में मुद्दे तलाशे और गढ़े जा रहे हैं, लेकिन सच में यदि मुद्दे ढूंढने हों तो ऐसे इलाकों का ही रुख करना होगा।
सरकार बन गया, इतना दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कोई काम न धंधा, सब आदमी वैसे ही मर रहा है।
समीर आत्मज मिश्र, BBC, दुधी, सोनभद्र।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। चुनाव का जो माहौल है वो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में भी है, जहां कुल 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 38 सीटों पर कल वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक सूबे में 80% से भी अधिक मतदान हुआ। असम में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी राज्य में भी उसे दोहराने का दावा कर रही है। उधर कांग्रेस वहां पर लंबे समय से सत्ता में है और उसके खिलाफ सत्ता विरोधी जो आवाज़ है वो मुखर हो रही है। BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने इम्फाल से ये रिपोर्ट भेजी है।
पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर की कुल 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 38 पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक सूबे में 80% से भी अधिक मतदान हुआ। असम में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी राज्य में भी उसे दोहराने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी आवाजें मुखर हो रही है।
हाँ, BJP तो जरूर जीतेगा मणिपुर में, तो सबसे अभी 60 सीट में तो मणिपुर ज्यादा से ज्यादा तो 20 के ऊपर जीतेगा।
आप भी बदलाव चाहोगे या वैसे ही?
ऐसे हमारा पसंद है ना, और हाथ मरकर हम देता है और जीतेगा, हम लोग का पार्टी से जीतेगा
कांग्रेस।
हेनरी हमारा पसंद है और जीतेगा।
और उधर
15 साल उसने बार बार वो तो वो जीत हुआ है ना, तो यहाँ का तो एक भी डेवलपमेंट तो पूरा जीरो हो गया।
पक्की सड़क से नीचे उतरकर तेलीपट्टी मंदिर के पास जो पोलिंग बूथ था, वहाँ मतदान खत्म हो जाने के बाद मर्द, औरत, बूढ़े, जवान सब जमा थे। औरतें रंगीन शोख लिबास में गप्पे मारती और ठहाके लगाती तो पास खड़े सुरक्षा बल के नौजवान गाड़ियों और दीवारों से पीठ लगाकर थोड़ा सुस्ताते हुए, मगर पास पास खड़े लोगों के लिए वोट, वोटिंग और मुद्दे एक दूसरे से दूर दूर थे। हाबम रंजना और पुष्पा देवी दोनों के मुद्दे अलग अलग, दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं और जातीय आधार भी अलग। एक मईतई हैं जिनकी तादाद मणिपुर में सबसे ज्यादा है। पुष्पा देवी खुद को तेली बताती हैं।
हम तो सोच रहे थे कि सभी जगह में BJP राज कर रहा है, अच्छा बता रहे थे, हम लोग को भी अच्छा होना चाहिए, मन से तो यही सोच रहे थे हमारे बिहारी लोग के लिए सुविधा दे, क्योंकि यहाँ पर तो बिहारी लोग का कोई मोल नहीं है। आज ये है, कल वो होता है, परसों बोलता है लोग ILP लगाओ। यहाँ के लिए हम लोग तो कोई कीड़ा मकोड़ा का जैसा है, मगर अभी इलेक्शन का टाइम है तो सभी लोग हम लोग को पदवी दे रहे हैं ऊँचा ऊँचा।
खास संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश और थोड़े वक्त तक रहने के लिए जो इनर लाइन परमिट सरकार की ओर से दिया जाता है, उसे पूरे सूबे में लागू करने की मांग तेज हो रही है। जिसे जाहिर है दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले पसंद नहीं कर सकते। सूबे में 2002 में राष्ट्रपति शासन के खत्म होने के बाद से कांग्रेस पार्टी सत्ता में मौजूद है, इसलिए विकास का मुद्दा तो बड़ा है ही, बदलाव की बात भी कही जा रही है।
यहाँ का तो हम लोग तो बोलते एक तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का तो बार बार यहाँ में कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट ने यहाँ का वो डेवलपमेंट नहीं है।
कांग्रेस की इबोबी सिंह सरकार के 7 नए जिले बनाने के फैसले को भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे पार्टी के लिए खुद ही मुसीबत खड़ी हो गई है। नगा समूह यूनाइटेड नगा काउंसिल ने नवंबर से ही नगा इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है, जिसका असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि यह नाकेबंदी मोदी सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM की साठगांठ से हो रहा है। मोदी सरकार ने NSCN IM के साथ शांति समझौता किया था। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र की जगह जो विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें मणिपुर से किसी भी क्षेत्र को अलग न करने का वादा सबसे पहला है। NSCN ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए दूसरे राज्यों के कई इलाकों पर दावा करती रही है। बीजेपी इस मामले पर बैकफुट पर दिख रही है। सूबे के बीजेपी अध्यक्ष के भावनंद सिंह कहते हैं,
प्राइम मिनिस्टर खुद बोल के गए हैं कि मणिपुर के इंटीग्रिटी में हम लोग कुछ समझौता करने नहीं वाला है, और उसके ऊपर हम लोग को होम मिनिस्टर भी आए और हम लोग का खुद अमित शाह जी आए, सब ने बोल के गया कि इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को आप विश्वास नहीं कर सकते तो किसको विश्वास करेंगे आप?
मणिपुर में बाकी बची सीटों पर 8 मार्च को मतदान होगा। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके इबोबी सिंह थौबाल से मैदान में हैं। उनके खिलाफ इरोम शर्मिला हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC इम्फाल, मणिपुर।
और अब आइए जरा देखें कि आज दिल्ली के अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता से जगह मिली है।
शुरुआत करते हैं जनसत्ता में छपी एक खबर से। कहा गया है कि अमरीका में भारतीय व्यवसायी की हत्या हो गई है। अखबार कहता है कि अमरीका में 43 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यवसायी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हरनीश पटेल साउथ कैरोलिना में लैंकेस्टर काउंटी में एक स्टोर के मालिक थे। एक और खबर आपको बता दूं, जो है अखबार पायोनियर से। इसके अनुसार पंजाब के अटारी में भारत पाकिस्तान सीमा पर रविवार को तिरंगा फहराया जाएगा, जो पाकिस्तान के लाहौर से भी दिखाई देगा। 110 मीटर ऊंचे खंभे पर लगने वाला ये तिरंगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। अखबार के अनुसार करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत वाले इस परियोजना के अंतर्गत खास किस्म का तिरंगा बनाया गया है, जो हर मौसम के लिए तैयार है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार शनिवार को हुई एक अहम बैठक में देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार माने जाने वाले GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल के प्रमुख विधेयकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि हो सकता है कि अब इसी साल 1 जुलाई से GST लागू किया जा सके। अखबार में छपी एक और खबर है कश्मीर से। कहा गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में छर्रे लगने से आंखों की रोशनी खो चुकी 15 साल की इंशा मुश्ताक 8 महीने बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने स्कूल वापस पहुंची।
और अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया मानसी दास। और आगे बढ़ते हैं। भारत में सेंसर बोर्ड ने फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म की निर्देशक अलंकृता श्रीवास्तव किसी भी हालत में फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हैं। सुनिए BBC न्यूज मेकर्स में BBC संवाददाता वैभव दीवान की अलंकृता से हुई ये खास बातचीत।
And the award goes to Lipstick Under My Burqa.
वो पल तो हर लड़की की लाइफ में आता है जब उसमें औरत बनने की चाहत जाग उठती है।
I'm Rihanna बीबी और मेरा गाना 7 things से इंस्पायर है।
लो आगे भोपाल की ब्रिटनी नंबर 3।
कितने फिल्म फेस्टिवल्स पर इंडिया से गई ये फिल्म और अवार्ड जीती, पर इंडिया में ही लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर हो गया बवाल। हेलो हाय, मैं हूं वैभव, ये है BBC न्यूज मेकर्स, जहां BBC हिंदी हर हफ्ते की वो बड़ी बात या पर्सनालिटी से आपको मिलाता है जो होता है न्यूज में। और बीते हफ्ते सेंसर बोर्ड और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की टसल काफी हेडलाइंस और सोशल स्पेस खींच रही थी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का बनाई है अलंकृता श्रीवास्तव ने और प्रोड्यूस की है प्रकाश झा ने, और इस समय अलंकृता इज ट्रैवलिंग विद हर फिल्म। मैंने अलंकृता को लंदन में पकड़ा और बात शुरू हुई। हेलो अलंकृता, कांग्रेचुलेशंस, फिल्म को ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड मिला है, कैसा रहा लोगों का रिएक्शन आफ्टर वाचिंग लिपस्टिक अंडर माय बुर्का?
हाँ, लोगों को तो बहुत पसंद आई फिल्म। दोनों जो हमारे शोज थे, दोनों शोज सोल्ड आउट थे,
और द ऑडियंस वॉज लार्जली ब्रिटिश, मतलब तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि कल्चरली अलग कॉन्टेक्स्ट में भी लोगों को फिल्म बिल्कुल समझ आई और लोग हंस रहे थे, दे वर मूव्ड एंड इट वॉज अमेजिंग. आफ्टर द फिल्म आई हैड सो मेनी पीपल कमिंग अप टू मी एंड जस्ट हगिंग मी एंड टेलिंग मी हाउ मच दे एंजॉयड द फिल्म.
आखिर कहानी क्या है फिल्म की अलंकृता?
फिल्म चार औरतों की कहानी है जो छोटे से शहर में रहते हैं और उनकी छोटे छोटे कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी लाइफ जो है वो बहुत सफोकेटिंग लाइफ हैं, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ हैं, और विद इन दोज रिस्ट्रिक्शंस एंड विद इन द सफोकेशन हाउ डू दे ट्राई टू लिव देयर स्मॉल लिटिल ड्रीम्स, दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. एंड या आई एम वेरी कीन एंड अप टू आई एम वेरी वेरी डिटरमिंड दैट ऑडियंसेस इन इंडिया मस्ट बी एबल टू सी द फिल्म.
अलंकृता, फिलहाल सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर रोक लगाई है, पर मैं आपसे जानना चाहता था कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो इस फिल्म से?
महिलाओं के बारे में वगैरह वगैरह मेरे कोई लाज उस तरीके से स्टेटमेंट बनाने का कोई वो नहीं है. मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जो जब लोग पिक्चर देखें तो उस दौरान उस डेढ़ दो घंटे के लिए वो इन चार औरतों के साथ उनकी जिंदगी को महसूस करें, उनके खुशियाँ, उनकी परेशानियाँ, उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें, उनकी उनकी सैडनेस और उनकी करेज. तो आई फील द होल आइडिया इज कि टू जस्ट बी विद द कैरेक्टर्स फॉर दैट पॉइंट इन टाइम एंड जस्ट फील दैट जर्नी.
अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस फिल्म को लेकर आपके लिए?
नेक्स्ट स्टेप एफकैट में जो स्क्रीनिंग होगी, एफकैट के लिए वहां पे अपील होगी. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म विल रिलीज.
ये थी अलंकृता श्रीवास्तव और उनसे बात कर रहे थे वैभव दीवान. और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से.
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त. ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहला टेस्ट मैच हारने के बाद मानसिक दबाव से निकलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने बाहर जाकर ट्रैकिंग की और पूरा एक दिन क्रिकेट के माहौल से दूर भी रही. लेकिन कल जब बेंगलोर में दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन शुरू हुआ तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी पारी केवल 189 रन पर सिमट गई. और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने खेल समाप्त होने के समय तक बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे. स्टंप के समय डेविड वार्नर 23 और बैटर रेनशॉ 15 रन बनाकर खेल रहे थे. कहां तो एक समय भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 72 रन था और कहां 189 रन तक पहुंचते पहुंचते पूरी टीम भी पेवेलियन पहुंच गई. पिछले मैच में स्टीव ओकीफ ने अपना जलवा दिखाया था तो कल अनुभवी नाथन लियन ने 8 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ी. उनका गेंदबाजी विश्लेषण रहा 22.2 ओवर 4 बैट इन 50 रन और 8 विकेट. उनकी ऑफ ब्रेक गेंदों का शिकार होने वालों में केएल राहुल भी शामिल हैं जिन्होंने सबसे अधिक 90 रन बनाए. केएल राहुल के बाद सबसे अधिक करुण नायर ने 26 रन बनाए. चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने 17-17 रन बनाए तो कप्तान विराट कोहली 12 रन बना सके. पहली पारी के आधार पर अब ऑस्ट्रेलिया भारत से 149 रन पीछे है और उसके 10 विकेट बाकी हैं. उधर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज पाकिस्तान के लाहौर शहर में खेला जाएगा. ये मुकाबला पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जाएगा. लेकिन क्वेटा टीम के विदेशी खिलाड़ी इंग्लैंड के केविन पीटरसन, मिल्स ल्यूक राइट और दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसो ने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया है. दूसरी तरफ पेशावर जलमी के विदेशी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के डेरिन सैमी, मार्लोन सैमुअल्स और इंग्लैंड के डेविड मार्लोन, क्रिस जॉर्डन और समित पटेल ने लाहौर में खेलने की मंजूरी दे दी है.
खेल समाचारों के साथ ही वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो आइए सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर.
बीबीसी समाचार. उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में बनारस में सियासी हलचल तेज हो गई है. कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य अहम पार्टियों के नेताओं ने चुनावी रैलियां की. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में उनकी जीत से पहले ओबामा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ट्रंप टावर के फोन कॉल्स टैप किए थे. सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खेरे ने कहा है कि बीते 48 घंटों में देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भूख से 110 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया मानसी दास ने और स्टूडियो संभाला है तिलक भाटिया ने। आपसे शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर मुलाकात होगी। निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।